एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्रा AI की मदद से तैयार किया गया है। आज के इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। हमारे सामने स्टीफन एम्ब्रोज की बेहद चर्चित किताब बैंड ऑफ ब्रदर्स पर आधारित कई विस्तृत स्रोत हैं।
हाँ, और ये स्रोत हमें ले जाते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकन पैराट्रूपर्स के खास कंपनी इजी कंपनी।
बिल्कुल, 526वीं रेजिमेंट, 101वीं एयरबोर्न डिवीजन, ये उनके सफर की कहानी है।
और ये सिर्फ लड़ाई की घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
असल में इन स्रोतों का दिल है वो असाधारण अटूट भाईचारा उन सैनिकों के बीच।
सही कहा।
तो आज हमारा मिशन है इन स्रोतों की मदद से ये समझना कि कैसे ट्रेनिंग और युद्ध की भयानक सच्चाइयों ने, मतलब इन आम लोगों को, एक ऐसी मजबूत टीम में बदल लिया
जो एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर थी।
हाँ, और कैसे यही भाईचारा उनकी कामयाबी और मुश्किलों में टिके रहने की सबसे बड़ी वजह बना। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें किताब का मुख्य विचार है, लेखक का परिचय, कंपनी की पूरी यात्रा का जिक्र है।
हाँ, और खास मुद्दे, संदेश, अहम किरदार और असल जिंदगी के सबक भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इजी कंपनी की कहानी शुरू होती है 1942 में। जगह थी जॉर्जिया का कैंप टुकोआ,
और ये सब वॉलंटियर्स थे, मतलब अपनी मर्जी से सेना में आए थे।
हाँ, और पैराट्रूपर बनने की बेहद कठिन ट्रेनिंग के लिए तैयार थे, जो उस जमाने में कोई आसान काम नहीं था।
बिल्कुल नहीं। पैराट्रूपिंग मतलब सबसे खतरनाक कामों में से एक। जबरदस्त शारीरिक और मानसिक दमखम चाहिए था।
और ये लोग कहाँ से आए थे?
अमेरिका के कोने कोने से। कोई किसान था, कोई फैक्ट्री वर्कर, कोई कॉलेज स्टूडेंट।
लेकिन एक बात कॉमन थी।
हाँ, वो सबसे बेहतरीन बनना चाहते थे।
और टुकवा में उनका सामना हुआ कैप्टन हर्बर्ट सोबेल से।
अच्छा, कैप्टन सोबेल। इनका नाम आते ही कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। स्रोत बताते हैं कि वो ट्रेनिंग देने में तो उस्ताद थे, हाँ, अनुशासन के पक्के, जरा सी भी ढील बर्दाश्त नहीं।
बिल्कुल, उन्होंने इन जवानों को शारीरिक तौर पर, मतलब उस हद तक तैयार किया जिसकी जरूरत जंग के मैदान में पड़ने वाली थी।
उनका वो मशहूर तरीका था ना, कुराही पहाड़ पर बार बार दौड़ लगवाना।
हाँ, कुराही, लगभग 3 मील ऊपर 3 मील नीचे। कैंप के पास ही था वो पहाड़,
और बहुत खड़ी चढ़ाई वाला।
यहीं से कंपनी को अपना नारा मिला, कुराही, जिसका मतलब है हम अकेले खड़े हैं,
जो उनकी पहचान बन गया।
ये ट्रेनिंग वाकई बहुत कठिन थी। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू यह है कि सोबेल जितने अच्छे ट्रेनर थे, जमीनी लड़ाई के मामले में आप कह सकते हैं उतने ही कमजोर लीडर साबित हुए।
अच्छा, कैसे?
स्रोतों के अनुसार उनके फैसले अक्सर गलत होते, नक्शा पढ़ने में दिक्कत आती थी, रणनीति की समझ थोड़ी कम थी।
और सैनिकों के साथ बर्ताव?
वो भी कई बार थोड़ा छोटा और बदला लेने वाला होता था।
तो फिर सैनिकों पर इसका क्या असर हुआ?
और यही एक अजीब सी बात हुई, सोबेल के प्रति ये जो साझा नापसंदगी थी ना, हाँ,
उसने अनजाने ने ही इन सैनिकों को एक दूसरे के करीब ला दिया।
कमाल है।
ये सिर्फ ट्रेनिंग की साझा मुश्किल नहीं थी, ये एक दूसरे का सहारा बनने की शुरुआत थी। वो सोबेल की सख्ती और गलतियों से निपटने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होने लगे।
ये तो वाकई कमाल की बात है कि कैसे एक साझा मुश्किल, या कहें कि एक साझा दुश्मन, चाहे वो अपना ही कमांडर क्यों न हो,
बिल्कुल,
वो एक अटूट बंधन की नींव रख सकता है।
तो निर्णायक मोड़ कब आया?
वो आया जब कंपनी इंग्लैंड पहुंची। वहां कंपनी के जो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स थे, NCOs,
यानी सार्जेंट कॉर्पोरल,
हाँ, वो अनुभवी लीडर्स जो सीधे सैनिकों के साथ काम करते हैं, उन्होंने एकजुट होकर कह दिया कि वो सोबेल के नेतृत्व में जंग में नहीं जाएंगे।
अरे, इसे तो विद्रोह माना गया होगा।
हाँ, एक तरह से विद्रोह माना गया, लेकिन असल में ये सोबेल की जमीनी नेतृत्व क्षमता पर भरोसे की पूरी तरह कमी का नतीजा था।
और इसका नतीजा क्या हुआ फिर?
नतीजा ये हुआ कि सोबेल को कमान से हटा दिया गया।
अच्छा, इससे न केवल कंपनी के अंदरूनी एकजुटता और मजबूत हुई, बल्कि डिक विंटर्स जैसे ज्यादा काबिल और सम्मानित लीडर के लिए रास्ता भी साफ हुआ।
डिक विंटर्स, जिन पर सैनिकों को पूरा भरोसा था।
बिल्कुल, ये लीडरशिप पर एक बड़ा सबक है। सिर्फ सख्ती काफी नहीं होती, लीडर को सम्मान और विश्वास कमाना पड़ता है, डर से काम नहीं चलता।
सही कहा। इसके बाद आया उनका पहला असली इम्तिहान, D-Day, 6 जून 1944, नॉर्मेंडी में।
हाँ, और स्रोतों में साफ लिखा है कि पैराशूट जंप वो योजना के मुताबिक बिल्कुल नहीं हुआ, पूरी तरह अस्त व्यस्त था।
क्यों, क्या हुआ था?
देखिए, रात का अंधेरा था, दुश्मन की विमान भेदी तोपों की जबरदस्त गोलाबारी थी और मौसम भी खराब।
ओह,
इन सब वजहों से कई विमान अपने रास्ते से भटक गए, सैनिक अपने तय लैंडिंग जोन से मीलों दूर उतरे,
कहीं भी,
हाँ कुछ तो सीधे दुश्मन के कब्जे वाले इलाके में या दलदली जमीन पर। कई सैनिक या तो मारे गए या उतरते ही पकड़ लिए गए। इजी कंपनी भी बुरी तरह बिखर गई थी।
और इसी अफरातफरी में उनके कंपनी कमांडर लेफ्टिनेंट मीहान,
हाँ उनका विमान भी मार गिराया गया, वो शहीद हो गए।
ऐसे संकट के समय में ही असली नेतृत्व सामने आता है।
बिल्कुल, कमान अपने आप सबसे सीनियर ऑफिसर फर्स्ट लेफ्टिनेंट डिक विंटर्स के पास आ गई।
विंटर्स ने क्या किया?
विंटर्स ने सबसे पहले बिखरे हुए सैनिकों को इकट्ठा करना शुरू किया और मिशन पर फोकस बनाए रखा।
और फिर आया ब्रेकआउट मैनर का हमला। स्रोत इसका जिक्र बहुत प्रमुखता से करते हैं।
हाँ, डी डे की सुबह ही विंटर्स को पता चला कि पास ही जर्मन तोपे तैनात हैं और वो यूटा बीच पर उतर रहे अमेरिकी सैनिकों पर भारी गोलाबारी कर रही हैं।
तो विंटर्स ने क्या किया?
विंटर्स ने सिर्फ एक दर्जन, मतलब करीब 12-13 सैनिकों के साथ बहुत सूझबूझ और हिम्मत से उन जर्मन ठिकानों पर हमला किया।
सिर्फ इतने कम लोगों के साथ?
हाँ, उन्होंने न सिर्फ दुश्मन को चौंका दिया बल्कि एक एक करके चार बड़ी 105 mm हॉविट्ज़र तोपों को तबाह कर दिया।
कमाल है।
ये सिर्फ विंटर्स की बहादुरी नहीं थी, ये उनकी टीम की ट्रेनिंग, आपसी तालमेल और पहल करने की क्षमता का सबूत था।
कहते हैं ये हमला इतना सटीक और कामयाब था कि वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी में इसे आज भी पढ़ाया जाता है।
बिल्कुल, छोटी टुकड़ी की रणनीति के एक क्लासिक उदाहरण के तौर पर।
ये दिखाता है कि कैसे मुश्किल हालात में भी अच्छी ट्रेनिंग और लीडरशिप वाली एक छोटी टीम बड़ा असर डाल सकती है।
सही बात है। नॉर्मेंडी में इसके बाद कैरेंटन शहर पर कब्जे की लड़ाई भी हुई जो बहुत खूनी साबित हुई। कंपनी को और नुकसान उठाना पड़ा।
नॉर्मेंडी के बाद उन्हें कुछ आराम मिला?
हाँ, कुछ आराम के लिए इंग्लैंड वापस भेजा गया, लेकिन ये राहत ज्यादा दिन नहीं टिकी।
फिर कहाँ भेजा गया?
सितंबर 1944 में उन्हें हॉलैंड भेजा गया, ऑपरेशन मार्केट गार्डन के लिए।
ऑपरेशन मार्केट गार्डन, ये क्या था?
ये मित्र राष्ट्रों की एक बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना थी।
अच्छा,
मकसद क्या था? मकसद था पैरा ट्रूपर्स की मदद से हॉलैंड के जरूरी पुलों पे कब्जा करना ताकि जमीनी सेना तेजी से जर्मनी में घुस सके।
सुनने में तो बड़ा प्लान लगता है।
हाँ, और शुरुआत में तो इजी कंपनी का डच लोगों ने हीरो की तरह स्वागत किया, लगा कि जंग जल्दी खत्म हो जाएगी।
लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
नहीं, ये ऑपरेशन उम्मीद के मुताबिक कामयाब नहीं रहा। जर्मन सेना का मुकाबला उम्मीद से कहीं ज्यादा तगड़ा निकला।
ओह,
और मित्र देशों की सेनाएं अपने कई लक्ष्यों तक पहुंच ही नहीं पाईं। ये एक बड़ी रणनीतिक नाकामी साबित हुई।
लेकिन इस नाकामी के बीच भी शायद विंटर्स ने फिर अपनी लीडरशिप दिखाई।
हाँ बिल्कुल, श्रोत बताते हैं कि दी आइलैंड कहे जाने वाले एक इलाके में उन्होंने सिर्फ 20 सैनिकों के साथ रात में नदी पार करके एक खतरनाक हमला किया।
सिर्फ 20 सैनिक?
हाँ, और दुश्मन की एक पूरी कंपनी जिसमें करीब 300 सैनिक थे उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया।
ये तो अविश्वसनीय है।
हाँ, ये एक और शानदार टैक्टिकल जीत थी विंटर्स की। लेकिन ऑपरेशन मार्केट गार्डन की जो बड़ी नाकामी थी, उसका सैनिकों के मनोबल पर गहरा असर पड़ा। वो लड़ाई के अनुभवी तो बन रहे थे, लेकिन लगातार जंग, साथियों की मौत और मिशन की नाकामी,
थकान और निराशा बढ़ रही होगी।
बिल्कुल, उन्हें समझ आ गया था कि युद्ध अभी लंबा चलेगा।
नॉर्मेंडी और हॉलैंड के बाद ऐसा लगता है कि उन्होंने सब देख लिया था।
लेकिन फिर आया बैटल ऑफ द बल्ज और बिस्टोइन। ये शायद उनकी सबसे बड़ी परीक्षा थी।
यकीनन,
दिसंबर 1944 जब मित्र देशों की सेनाएं आगे बढ़ रही थीं, जर्मनों ने बेल्जियम के आर्डेंस के जंगलों से अचानक एक बड़ा जवाबी हमला किया।
इसी को बैटल ऑफ द बल्ज कहते हैं।
हाँ, और 101वीं एयरबोर्न डिवीजन, जिसमें इजी कंपनी भी थी, को फौरन बेल्जियम के शहर बास्टोइन भेजा गया।
बास्टोइन क्यों?
वो सड़कों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जर्मन बढ़त को रोकने के लिए उसे बचाना जरूरी था।
और वहां पहुंचते ही
वो घिर गए। जर्मन सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। आए है, ये उनके हौसले और उनके भाईचारे का असली इम्तिहान था। हालात वाकई बहुत भयानक थे।
किस तरह के हालात थे, श्रोत क्या बताते हैं?
कड़ाके की ठंड, मतलब तापमान जीरो से बहुत नीचे, हर तरफ घुटनों तक बर्फ।
और कपड़े?
सैनिकों के पास सर्दियों के पूरे कपड़े तक नहीं थे। कई तो बस वही वर्दी पहने थे जो हॉलैंड की लड़ाई में पहनी थी।
हे भगवान।
खाने पीने और गोलियों की जबरदस्त कमी थी, और सबसे डरावनी चीज थी जर्मन तोपों की लगातार बमबारी
हर वक्त।
हाँ, पेड़ों के टुकड़े हवा में उड़ते रहते थे, और वो फॉक्स होल यानी जमीन में खोदे गए गड्ढे, उनमें छिपे सैनिकों पर मौत का साया मंडराता रहता था। ठंड इतनी थी कि कई बार राइफलें तक जम जाती थीं।
ऐसी हालत में टिके रहना ही मतलब कैसे मुमकिन हुआ?
और उनका टिके रहना मुमकिन हुआ सिर्फ एक वजह से, उनका आपसी भाईचारा।
अच्छा।
वो फॉक्सहोल में एक दूसरे से सटकर गर्मी लेने की कोशिश करते, बचा खुचा थोड़ा सा राशन आपस में बांटते,
और सबसे बढ़कर एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहे।
यहीं पर उनका बैंड ऑफ ब्रदर्स वाला रिश्ता सबसे ज्यादा परखा गया।
बिल्कुल। स्रोतों में मेडिक्स का भी जिक्र है, जैसे यूजीन डॉक्रो।
हाँ बिल्कुल, डॉक्रो जैसे मेडिक्स ने कम दवाइयों और साधनों के बावजूद लगातार बमबारी के बीच घायल साथियों की जान बचाने के लिए दिन रात एक कर दिया। उनकी वीरता अद्भुत थी।
और वो मशहूर वाकया भी यही हुआ था ना, जब जर्मनों ने सरेंडर करने को कहा।
हाँ, जब जर्मन कमांडर ने आत्मसमर्पण करने को कहा तो 101वीं के एक्टिंग कमांडर जनरल मैकॉलिफ ने सिर्फ एक शब्द का जवाब भेजा, नट्स।
नट्स यानी बकवास।
हाँ, ये उस पूरे डिवीजन के जज्बे का प्रतीक बन गया।
इजी कंपनी ने कहाँ अपनी पोजीशन संभाली थी?
बास्टोइन के पास जैक्स नाम के जंगल में। उन्हें भारी नुकसान हुआ, कई सैनिक मारे गए या बुरी तरह घायल हुए, फ्रॉस्टबाइट से पीड़ित हुए, लेकिन वो पीछे नहीं हटे।
आखिरकार गहरा टूटा।
हाँ, कई हफ्तों की घेराबंदी के बाद जनरल जॉर्ज पैटन की तीसरी सेना ने जर्मन घेरा तोड़ा और 101वीं एयरबॉर्न को राहत मिली।
वो बास्टोइन से हीरो बनकर निकले।
हाँ, उनकी रक्षा युद्ध के अहम मोड़ों में से एक साबित हुई, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बहुत बड़ी थी। फ्रॉस्टबाइट, ट्रेंच फुट और वो लगातार मौत के साये में रहने का तनाव, इन सब ने कई सैनिकों पर जिंदगी भर ना मिटने वाले जख्म छोड़े।
बास्टोइन उनके बंधन की ताकत का सबसे बड़ा सबूत था,
मगर बहुत महंगा सबूत।
युद्ध अब अपने आखिरी दौर में पहुंच रहा था। इजी कंपनी जर्मनी में दाखिल हुई और वहां उनका सामना एक और खौफनाक सच्चाई से हुआ।
हाँ, अप्रैल 1945 में गश्त के दौरान उन्हें लैंड्सबर्ग के पास एक नाजी कंसंट्रेशन कैंप मिला।
कंसंट्रेशन कैंप।
हाँ, और जो उन्होंने वहां देखा, भूख से मरते हुए कैदी, लाशों के ढेर, इंसानों के साथ जानवरों से भी बदतर सुलूक, उसने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया।
मैं कल्पना कर सकता हूँ इसका उन पर क्या असर पड़ा।
उन्हें गहराई से यह एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक दुश्मन की सेना से नहीं लड़ रहे थे, बल्कि एक ऐसी विचारधारा से लड़ रहे थे जो इतनी भयानक और अमानवीय थी जिसकी कल्पना भी मुश्किल है।
इस खोज ने उनके त्याग को एक नया मतलब दिया होगा ना।
बिल्कुल, एक गहरा नैतिक मतलब। ये अनुभव उन पर जिंदगी भर हावी रहा।
युद्ध का अंत कैसा रहा उनके लिए?
कुछ हद तक फीका, मतलब उन्होंने बवेरियन आल्प्स में हिटलर के मशहूर पहाड़ी ठिकाने ईगल्स नेस्ट पर कब्जा किया।
वो तो नाजी सत्ता का प्रतीक था।
हाँ, एक सिंबॉलिक जीत थी, लेकिन असली लड़ाई तो खत्म हो चुकी थी। इसके बाद शुरू हुआ कब्जे वाले इलाके को संभालने का मुश्किल काम।
जैसे कि
लाखों बेघर लोग थे, पूर्व नाजी सदस्य थे, कानून व्यवस्था बनाए रखना था, काफी जटिल काम था।
और घर वापसी वो कैसी रही?
घर वापसी के लिए पॉइंट सिस्टम लागू हुआ।
पॉइंट सिस्टम?
हाँ, जिन सैनिकों ने ज्यादा समय युद्ध में बिताया था, ज्यादा लड़ाइयों में हिस्सा लिया था, या जिनके परिवार थे, उन्हें ज्यादा पॉइंट मिले और वो पहले घर गए।
इससे तो थोड़ी बेचैनी फैली लोगी कंपनी में।
हाँ, थोड़ी फैली, क्योंकि जो लोग इतने वक्त तक कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे, वो अब अलग अलग समय पे घर जा रहे थे, वो एकता थोड़ी टूट रही थी।
युद्ध के बाद इन सैनिकों की जिंदगी कैसी रही? क्या वो सामान्य जीवन जी पाए?
सब अपनी अपनी जिंदगी में लौट गए। कोई कंस्ट्रक्शन के काम में लगा, कोई टीचर बना, किसी ने अपना बिजनेस शुरू किया।
मेजर विंटर्स
एक कामयाब बिजनेसमैन बने, लेकिन कई लोगों को PTSD यानी युद्ध के भयानक अनुभवों से उपजा गहरा मानसिक तनाव जैसी समस्याओं से जूझना पड़ा।
हालांकि उस जमाने में इसे शायद समझा नहीं जाता था।
नहीं, ठीक से समझा नहीं जाता था, और इसका कोई औपचारिक नाम भी नहीं था जैसा आज है। उन्हें चुपचाप इससे जूझना पड़ा।
लेकिन एक चीज जो नहीं बदली,
वो था उनका आपसी रिश्ता,
उनका भाईचारा।
हाँ, जैसा कि स्रोतों में बार बार जोर दिया गया है, उनके बीच का वो भाईचारा जिंदगी भर कायम रहा। वो दशकों तक नियमित रूप से मिलते रहे।
रियूनियन होते थे उनके।
बिल्कुल, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे, उनके परिवार एक दूसरे को जानते थे। ये उनके उस बंधन की गवाही देता है जो युद्ध की आग में तपा था और शांति के समय में भी अटूट रहा।
तो इन सभी बातों को समेटे तो इस पूरी कहानी से, इन स्रोतों से हम क्या खास सबक, क्या मुख्य बातें निकाल सकते हैं?
मेरे ख्याल से सबसे पहला और शायद सबसे अहम सबक है भाईचारे की ताकत।
हाँ।
इन स्रोतों का निचोड़ यही है कि जंग के मैदान में एक सैनिक को लड़ने की प्रेरणा वो किसी बड़े देशभक्ति के नारे या विचारधारा से ज्यादा अपने बगल में लड़ रहे साथी से मिलती है,
अपने साथी के लिए।
बिल्कुल, इजी कंपनी का वो गहरा रिश्ता जो ट्रेनिंग की मुश्किलों और लड़ाई की भयानक सच्चाइयों से बना था, वो आपसी जिम्मेदारी, भरोसे और यहां तक कि प्यार का एक सिस्टम बन गया था। वो एक दूसरे को निराश नहीं करना चाहते थे, वो एक दूसरे की हिफाजत के लिए जान पर खेल गए, यही उनकी असली ताकत थी। वो एक दूसरे के लिए लड़े।
ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा सबक क्या है? दूसरा बड़ा सबक मुझे लगता है लीडरशिप के बारे में है, कैप्टन सोबेल और मेजर विंटर्स का फर्क।
हाँ, वो बहुत स्पष्ट है।
सोबेल ने सख्ती से ट्रेनिंग दी, शारीरिक तौर पर मजबूत बनाया, लेकिन उनके अहंकार और सैनिकों के प्रति सम्मान की कमी ने भरोसे को खत्म कर दिया।
जबकि विंटर्स शांत थे, काबिल थे, हमेशा आगे बढ़कर नेतृत्व करते थे और अपने लोगों की फिक्र करते थे। उनका नेतृत्व डर पर नहीं, सम्मान पर टिका था,
और इससे भरोसा पैदा हुआ। सैनिकों ने मुश्किल हालात में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया।
सही कहा, ये किसी भी टीम के लिए, चाहे वो सेना की हो या दफ्तर की, एक बड़ा सबक है कि असली लीडरशिप कैसी होती है।
तीसरा सबक
युद्ध की असलियत के बारे में है। ये स्रोत जंग की किसी भी रोमांटिक या बढ़ा चढ़ाकर बताई गई तस्वीर को खारिज करते हैं।
कोई महिमा मंडन नहीं,
बिल्कुल नहीं। ये लड़ाई की कठोर बेरहम सच्चाई दिखाते हैं। डीडे की अफरातफरी, नॉर्मेंडी और हॉलैंड की खूनी लड़ाइयां, बास्टोइन की वो जमा देने वाली ठंड और लगातार मौत का डर और युद्ध का गहरा मानसिक आघात।
ये बहादुरी की कहानी जरूर है, लेकिन
ये बहादुरी डर का न होना नहीं थी, बल्कि डर के बावजूद अपना फर्ज निभाने की हिम्मत थी। जंग कोई गौरवशाली एडवेंचर नहीं, बल्कि जिंदा रहने की एक क्रूर जद्दोजहद है।
और चौथा सबक है साधारण लोगों के असाधारण साहस का।
हाँ, ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है।
ये बात बार बार सामने आती है कि इजी कंपनी के लोग अमेरिका के अलग अलग हिस्सों से आए आम लोग थे, किसान, मजदूर, छात्र, वो कोई पैदाइशी हीरो नहीं थे,
बिल्कुल साधारण।
लेकिन मुश्किल हालात, जबरदस्त ट्रेनिंग और सबसे बढ़कर वो मजबूत भाईचारा, इसने उन्हें हिम्मत, सहन शक्ति और त्याग के अविश्वसनीय काम करने की ताकत दी।
उनकी कहानी बताती है कि सही माहौल और सही सपोर्ट मिले तो आम लोग भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, असाधारण बन सकते हैं।
अंत में एक विचार जो दिमाग में आता है।
हाँ, स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि युद्ध खत्म होने के बाद इन सैनिकों के लिए सबसे कीमती चीज जीत या मेडल नहीं थे,
बल्कि वो रिश्ते थे।
हाँ, वो गहरे अटूट रिश्ते थे जो उन्होंने बनाए थे। वो उनकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन गया। और यहीं पर एक जरूरी सवाल उठता है आज के दौर के लिए।
क्या सवाल?
क्या आज के दौर में, जब समाज ज्यादा व्यक्तिगत होता जा रहा है और तकनीक हमें जोड़ती भी है और कहीं ना कहीं अलग भी करती है, क्या हम वैसे गहरे, निस्वार्थ सामूहिक बंधन बनाने की क्षमता खो रहे हैं?
ये सोचने वाली बात है।
खासकर मुश्किल और बेहद दबाव वाले हालातों में एक दूसरे पर उस तरह निर्भर रहने की क्षमता जो इजी कंपनी ने दिखाई, क्या हम वो क्षमता खो रहे हैं?
ये वाकई सोचने वाली बात है।
हाँ, इस पर विचार करना जरूरी है कि क्या हम वो सबक भूल रहे हैं जो इजी कंपनी जैसी कहानियां हमें सिखाती हैं। एक साझा मकसद के लिए जुटना, आपसी भरोसा रखना और मुश्किल घड़े में एक दूसरे का साथ न छोड़ने की वो अटूट प्रतिबद्धता।
आज के इस विश्लेषण के लिए बस इतना ही। उम्मीद है इजी कंपनी की कहानी और उनके भाईचारे की ताकत पर ये बातचीत ज्ञानवर्धक रही होगी और कुछ सोचने पर मजबूर किया होगा।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एक्टर फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।